नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति और जनजातीय बस्तियों की सुधार योजना के तहत मलकागंज चौक और तिमारपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव आज से प्रारंभ। दिल्ली पुलिस ने ट्रांस यमुना क्षेत्र में मादक पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। खेल महाकुंभ कल से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा शुरू। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों कारीगरों को सहयोग देना है। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि प्रस्तावित की गई है, ताकि कार्यक्रम का व्यापक विस्तार किया जा सके। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना न सिर्फ कारीगरों को नई अर्थव्यवस्था में स्थायी रूप से सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्नत कौशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच के जरिए उन्हें वास्तव में प्रगति करने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 का जिक्र करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बजट में कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति और जनजातीय बस्तियों की सुधार योजना के तहत मलकागंज चौक और तिमारपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक कई बस्तियों के विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि अब इन बस्तियों में सड़क, नाली, पानी, बिजली और अन्य सभी सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह प्रयास है कि कोई भी बस्ती पीछे न रहे और हर परिवार को सम्मान के साथ बेहतर जीवन मिले। श्रीमती गुप्ता ने आज पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि महिलाओं की फ्री बस यात्रा के नाम पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिंक सहेली कार्ड के जरिए पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा कि हर महिला के पास अपना डिजिटल कार्ड होगा, इससे उन्हें असीमित फ्री बस यात्रा मिलेगी और हर यात्रा का रिकॉर्ड भी रहेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी प्रणाली डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।
हम लेके आए पिंक सहेली कार्ड, जिसमें कार्ड होगा और दिल्ली की बहनों के लिए होगा। जितनी बार आप बस में यात्रा करेंगे आपकी यात्रा फ्री, पर वो जो भ्रष्टाचार और घोटाले में पैसा जाता था वो अब नहीं जा पाए। सरकार का नुकसान नहीं और बहनों का फायदा नहीं रुकेगा। और हमने DTC को कर्जे में से बाहर निकालने के लिए IIT दिल्ली के साथ मिलकर रूट रैशनलाइजेशन किया। हमने बहुत सारे DTC में सुधार किए हैं। आज DTC नुकसान से निकलना शुरू हो गई है।
इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उनका विनम्र व्यक्तित्व, सर्वसमावेशी विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संविधान के मूल्यों के प्रति उनका दृढ़ विश्वास सभी के लिए मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन परिसर की नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक केंद्रित सुशासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। नए भवन परिसर आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करते हैं। कर्तव्य भवन एक और दो में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में AI पर तेजी से कार्य हो रहा है और इसके लिए देश में पर्याप्त युवा प्रतिभाएं भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI को भारत की शिक्षा प्रणाली में कक्षा 3 से लेकर उन्नत शोध स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
क्लास 3 से लेकर एडवांस रिसर्च तक AI को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इश्यू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। AI सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। अभी हमने देखा कई सारे बी स्कूल्स अपने पढ़ाई में AI प्रिपेयरनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, उसकी मॉडल बना रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में जाने माने लेखकों, मीडिया हस्तियों और जाने माने साहित्यकारों समेत करीब 50 लोग हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव का विषय है राष्ट्र प्रथम, अनेकता में एकता।
यह साहित्य महोत्सव एक जीवंत मंच है जो भारत की कई भाषाओं, साहित्यिक परंपराओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और रचनात्मक विषयों की आवाजों को एक साथ लाएगा। इस वर्ष महोत्सव का उद्देश्य साहित्य को एक जीवंत शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है, जो विरासत और आज के विचारों दोनों को दर्शाएगा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने छात्रों में साहित्य पढ़ने और उसे समझने की आदत डालने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि यह महोत्सव न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों छात्रों को बल्कि राजधानी के अन्य विश्वविद्यालय सहित दिल्ली वासियों को भी साहित्यिक संस्कार को बढ़ावा देगा।
जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले केवल उन बच्चों के लिए नहीं, बाकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और दिल्ली के लोगों के लिए एक प्रेरणा देने का, संस्कार देने का, आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये एक अच्छी पहल है और आने वाले वर्षों में हर साल हम इसको करेंगे।
इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषाएं और साहित्यिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष रवि प्रकाश टेकचंदानी ने कहा कि यह महोत्सव सिर्फ एक पुस्तक मेला नहीं है, बल्कि इसमें कला, संस्कृति, समाज और मीडिया जैसे कई विषय शामिल है।
इसके पीछे भावना ये है कि हमारा जुड़ाव पुस्तकों से हो, कला से हो, संस्कृति से हो, भारत की श्रेष्ठता से हो, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लेकर के आगे बढ़े, उसका पोषण करें। इसलिए हम अनेकता में एकता के बोध के साथ इस लिटरेचर फेस्टिवल को कर रहे हैं।
3 दिवसीय इस महोत्सव में मशहूर अभिनेता पीयूष मिश्रा, पंकज त्रिपाठी और शांतनु बोस जैसे हस्तियां हिस्सा लेंगे। इसके अलावा महोत्सव में पैनल सत्र, कविता संध्या, लोक प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह पहला साहित्यिक उत्सव का समापन इस महीने की 14 तारीख को होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली नगर निगम वर्तमान में कार्यरत मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समान वेतन की मांग को पूरा करेगा। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब नगर निगम में कार्यरत सभी MTS कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा और इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत लगभग 4000 MTS कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
हमने सबने मिलकर एक वादा किया कि हम सभी DBC जो हमारे MTS भाई हैं, सबको हम सेम वेतन देंगे। 27,900 रुपए का हमने वादा किया था और कल बजट में हमारे नेता सदन प्रवेश भाई जी उस पे फाइनल स्टैंप लगाएंगे हाउस की परमिशन लेकर, कल के फाइनल बजट में हम उसको पास करने जा रहे हैं।
दिल्ली नगर निगम एमसीडी के अपर आयुक्त संतोष राय ने आज विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर वेस्ट जोन में नागरिक सुविधाओं और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निवासियों से संवाद किया और स्वच्छता, पार्कों के रखरखाव, कचरा प्रबंधन और अन्य निगम संबंधी मुद्दों पर उनके सुझाव भी लिए। दिल्ली में आज दूरदर्शन की वरिष्ठ समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1980 से 2005 तक उन्होंने करोड़ों दर्शकों के लिए समाचार प्रस्तुत किए। उनके निधन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरला माहेश्वरी ने भारतीय पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण युग को अपनी सशक्त आवाज दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वो दूरदर्शन के जरिए दशकों तक हर घर का सुपरिचित चेहरा रही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने आज ट्रांस यमुना क्षेत्र में चल रही मादक पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 958 ग्राम का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक स्कूटी, 2 मोबाइल फोन और 17,000 रूपये से अधिक नकदी भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे जांच जारी है। दिल्ली में खेल महाकुंभ कल से छत्रसाल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ के प्रारंभिक चरण में कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्क्वाश जैसे खेलों को शामिल किया गया है।
इस खेल महाकुंभ में लगभग 20,000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इस महाकुंभ में आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यह खेल महाकुंभ राजधानी के 16 विभिन्न स्टेडियमों में आयोजित किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र के युवा को समान अवसर मिल सके। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने बताया कि खेल महाकुंभ के उद्घाटन के अवसर पर कल छत्रसाल स्टेडियम में पैरा एथलीटों के नेतृत्व में एक परेड निकाली जाएगी।
अनेक ऐसे अच्छे एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स और प्रमोटर्स जो डाइट को, फिटनेस को, वेट लिफ्टिंग को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, दिल्ली के बच्चों को नया मौका देने के लिए आपने हमें अवसर दिया है।
इस महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को 1,75,000 रुपए, रजत पदक विजेता टीम को 1,51,000 और कांस्य पदक जीतने वाली टीम को 1,31,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं खेल में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता को 11,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 9,000 और कांस्य पदक विजेता को 7,000 रुपए मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नीरज कुमार ने रजत और अखिल शोराण ने कांस्य पदक जीते। भारत ने स्पर्धा में क्लीन स्वीप करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। राजधानी में अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत और नामीबिया के बीच खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप मैच के कारण दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई लाइनों पर आखिरी मेट्रो का समय 1 से 2 घंटे तक बढ़ा दिया है। मेट्रो प्रशासन ने मैच के बाद भारी भीड़ को संभालने के लिए ये कदम उठाया है। दिल्ली में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नामीबिया के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 3 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। और अब हाल मौसम का। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों की सुधार योजना के तहत मलकागंज चौक और तिमारपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव आज से प्रारंभ। दिल्ली पुलिस ने ट्रांस यमुना क्षेत्र में मादक पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार और खेल महाकुंभ कल से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।